जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय यशोदानन्दन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानन्दन जय ब्रज जन रंजन। जय जय यमुना तीरावन चारी। जय यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत साध श्री वसति गौर भक्तवृन्दाय। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत साध श्री वसति गौर भक्तवृन्दाय। कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत साध श्री वसति गौर भक्तवृन्दाय। श्री Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Thank you. Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudasa. Jaya Garanita, Garanita. Srinivasa Govinda, Sri Venkatesa Govinda, Srinivasa Govinda, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Nitaigara Haribo, ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमसुखे भक्तिर्भवति नैसुखे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 16 इस अध्याय प्रचेताओं को नारद का उपदेश एतात् पदं तज्जग आत्मनः परम् सकृद् विभतां सवितुर्यथा प्रभा यथा सव जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमताया एतात् पदं जगतात्मनः परम् सकृद् विभतां सवितुर्यथा प्रभा यथा सव जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमताया एतात् पदं जगतात्मना परम् सकृद् विभतां सवितुर्यथा प्रभा यथा सव जागृति सुप्ति शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमताया एतात् पदं जगतात्मना परम् सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सव जागृते सुप्ता शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमताय एतात् पदं तच्च गतात्मना परम् सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा शव जागृते सुप्तशक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमतया एतात् पदं जगतात्मना परम् प्रभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सव जागृति सुप्तशक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विभीता शब्दार्थ एतात् ये दृश्य जगत पदम निवासस्थान तत् वो जगतात्मनः भगवान का परम दिव्य शक्रोत कभी कभी विभातम प्रकट होने वाला सवितु सूर्य का यथा जिस प्रकार प्रभा सूर्य प्रकाश यथा जिस प्रकार सबह इंद्रिय जागृति प्रकट होती है सुप्ता निष्क्रिय शक्तया शक्तियां द्रव्य भौतिक तत्व क्रिया कर्म ज्ञान ज्ञान निद्राभ्रमम् भ्रम से उत्पन्न अंतर आत्मयः लुप्त हो जाता है अंतया लुप्त हो जाता है। अनुवाद उपतात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अवे चरणारविंद भक्ति विधान तो स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है उसी प्रकार ये दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रिया चेतन रहती है तो वह शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती है, किंतु जब शरीर मोह रहता है तो सोया रहता है तो सारी क्रिया अव्यक्त होती है। इसी प्रकार सारे दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। तात्पर्य इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदावत तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान एक साथ इस दृश्य जगत में भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण हैं। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान कृषि प्रकार सर्वव्यापी है। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित है क्योंकि भगवान की शक्ति उसमें अभिन्न है। अतः इस दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उसमें अभिन्न है। सूर्य प्रकाश धूप सूर्य से भिन्न नहीं है किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता, जो लोग इस संसार में रह गए सह रहे रह रहे वे भगवान की शरीर की किरण में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक का परम पदम शब्द भगवान की निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में ईशावास्य सर्वम इदम में हुई है। भले हो भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा है, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बकिंघम महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उनकी संपत्ति होता है। उन्हें इस महल की अपना बनाने के लिए महल को प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वो सभी प्रकार में भले ही स्वयं उपस्थित ना रहे, किंतु फिर भी सारे महल उनका राजस्व संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश प्रकाश है, सूर्य गोलक स्वयं प्रकाश है और सूर्यदेव भी प्रकाशी है, किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्यदेव विवाशवान एक रूप नहीं है। एक साथ एक कर भी और भिन्न होने की यही अर्थ है, अचिंत्य भेदावत तत्व। सभी ग्रह सूर्य प्रकार पर निर्भर है और सूर्य को सूर्य के ताप से अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते हैं और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरण होने के कारण वो सूर्य प्रकाश से अभिन्न है। इस प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न है। ये सारे संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि यह सूर्य से ही उत्पन्न है और उसके सारे फलों से सूर्य निहित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारण के कारण है और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त है। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रिय निष्क्रिय रहती है, किंतु भगवान की जगन्नाथ बोलते सुभद्राण सुदर्शन की गौरताय की जगत कृष्ण प्रोपा की। अर्थ यह नहीं कि इंद्रिया अनुपस्थित रहती है, जगाने पर इंद्रिय पुनः सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार ये दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भृत्वा भृत्वा प्रलियते। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो ये एक प्रकार की निद्रा अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इसी तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए निर्भर है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चन्दनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामहं प्रदान्तिता प्रदान्तितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं मितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगनालिता श्रीविशाखाशनं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात देश था है कि नारद मुनि ने उनको ये अचिंत्य भेद तत्व को शिक्षा दिए। ना तो प्रभुपाद लिखते कि इसे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदावद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। इसका शुरुआत पिछले श्लोक में भी हमने कल चर्चा किया था, 15वां श्लोक में भी केवल उसका थोड़े मात्रा में निर्देश करते कि भगवान अपनी सारे सृष्टि का ये जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सृष्टि है भगवान, लेकिन ये भौतिक जगत का भी जो मूल है वो भगवान है अपने प्रति, दूसरे भगवान से अभिन्न। जिस प्रकार का उदाहरण देते हैं कि एक जो वृक्ष है भगवान एकमात्र इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। ब्रह्मा जी अपने प्रथम प्रार्थना में वही प्रार्थना करते कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो आदि है और अनादि है। तो इसलिए कहें कि लोग हमको ही प्रश्न पूछते हैं, हमारा भी पहले भी वही प्रश्न था सबका, हम सबका कृष्ण भावना मताने से पहले, कि जब से हमें बताया जाता है कि मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी का पिताजी है, तो बताता है कि भगवान सारे स्रोत का मूल कारण है। तो बताते कि भगवान का भी सृष्टि किससे जरूर होगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण, उनके आगे कोई यही नहीं है, वो सारे कारण का कारण है। तो उसी को समझने के लिए हमको इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अचिंत्य है, क्योंकि भगवान का शक्ति अचिंत्य है। इसलिए भगवान को हम ये साधारण जो हमारा भौतिक इंद्रिय के द्वारा हम उसको समझ नहीं सकते हैं, है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परतर निर्मल ऋषि के न ऋषि कृष्ण भक्ति रूपी, और सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परतर निर्मल ऋषि के नी अथ श्री कृष्ण नावादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवान मुखा है जीवाद। भगवान जब तक स्वयं को प्रकट नहीं करते हैं तुम भगवान के बारे में हमारे क्या जान सकते हैं, नहीं जान सकते। जैसे कोई व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, या तो जो व्यक्ति उसी के व्यक्ति को ठीक ठीक से जानता होगा तो उसी से हम सुन सकते हैं, या स्वयं अगर व्यक्ति अपने आप को अगर प्रकट करना चाहता है बताना चाहता है तो हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंद्रिय है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोखेज, वो सारे इंद्रिय से परे है, इसलिए भगवान सारे इंद्रिय से परे है। तो हमारा भौतिक इंद्रिय के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो ये जो अचिंत्य भेद अवैध, ये हम शुरुआत के दिन में सुनते आ रहे हैं, और ये जो शब्द इतना प्रचलित है कि जब कभी दीक्षा के समय तो हर जो विद्यार्थी जो दीक्षा लेने वाले हैं उनको वही एक ही मतलब अंत में वही प्रश्न पूछा जाता है कि ये तत्व आप बताओ, क्योंकि हमारा जो संस्था चली कि इस हमारा जो फाउंडेशन है इसके ऊपर आधारित है, क्योंकि मायावादी जो लोग है ना, तो उनका भी वही है, ये है कि हम भगवान हैं। तो यहाँ पे बताया कि अचिंत्य भेद और अवध, भगवान के हमारा हम भगवान से अलग है और भगवान भेद और अवध। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है वो एकदम मतलब अंतिम है, उससे परे और कुछ है ही नहीं है अपनी। जिस प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी भी बताते हैं कि भगवान के परे कुछ नहीं है, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है वो भी उसे मतलब जो अंतिम शिक्षा है, अंतिम तत्व है, उस तत्व के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ कर दिया कि हम भगवान से अभिन्न है,
और भगवान से अलग, क्योंकि गुणात्मक रूप से हम भगवान के साथ है ना, गुणात्मक गुण नहीं है, क्योंकि भगवान के तो असीम गुण है अगिनत गुण, लेकिन गुणात्मक रूप से, गुणात्मक क्या है तो इसलिए बताया जाता है कि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मम वंश जीव लोक जीव हूत सनातन। तो इससे प्रमाणित होता है कि हम भगवान का अंश है, तो हम भगवान का अंश है इसी मात्रा में हम गुणात्मक में भगवान के साथ है। तो प्रभुपाद जी कहीं हर पूरे, अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी के कक्षा में, प्रभुपाद जी के जो आदान प्रदान उसमें, तो प्रभुपाद जी हमेशा इसी शब्द को इस्तेमाल करते थे कि मायावाद। तो जब विदेश में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो उनको अर्थशास्त्र से पता नहीं था कि मायावाद कौन है, तो उनको लगा था कि, ये लग रहा था कि शायद प्रभुपाद जी के कोई शत्रु है भारत में जिसका नाम है मायावाद। तो यही अच्छा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मायावाद भाष्य सुन ले हय सर्वनाश है ना। क्योंकि ये हम देखते हैं कि जितने बार हम बाहर जाते हैं प्रवचन करने के लिए या ट्रेन में हम मिलते हैं, तो लोग उसी तत्व को बार बार समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि, क्योंकि हर व्यक्ति संसार में भगवान बनना चाहता है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहते कि हम बताएं कि जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कोई अपने आप को दास नहीं मानना चाहता है। तो इसलिए जो मायावादी तत्व वही है कि हर व्यक्ति भगवान चाहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहते कि मैं किसी के नीचे रहूं, मैं भी भगवान बन सकता हूं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वहाँ मैंने गिरिराज स्वयं महाराज, तो उनको जब पता चला एक स्वामी जी आए हैं, तो प्रभुपाद जी के कक्षा में आए और सुने, तो इसी कक्षा में प्रभुपाद जी एक शब्द बताए उनकी कि क्या हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो इससे गिरिराज महाराज इतने प्रभावित हुए, क्योंकि इससे पहले भी उनको भी कुछ मायावादी तत्व प्राप्त हुआ था, वो भी अपने कमरा में लिखे थे कि आई एम गॉड है ना, क्योंकि हर व्यक्ति चाहते थे कि मैं भगवान बनते थे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे अचिंत्य भेद और अभेद देते थे, लेकिन परिमाण मात्रा में हम भगवान के साथ कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। तो इसी को प्रतिपादन करते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का रश्मि, सूर्य का जो किरण है वो सूर्य से अभिन्न है, लेकिन सूर्य का जो किरण है उसको हम सूर्य ग्रह नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी जो तत्व है वहाँ सूर्य देवता, जिसका नाम भी बताया गया कि विवाश्मान है। तो ये तीनों अलग है, जैसे भागवतम के पहला स्कंद में बताया कि ब्रह्मेति भगवान इति परमात्मति भगवान इति। तो केवल हम अगर भगवान के शक्ति को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर वही मायावादी हो गया, एनर्जी एंड एनर्जेटिक थी। तो इससे हम देखते हैं कि जैसे हम अभी प्रभुपाद जी के, अभी प्रभुपाद जी हमारे सामने नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के जितना भी रिकॉर्डेड जो ध्वनि है वो प्रभुपाद जी अभिन्न है। तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बताते हैं कि ये मेरा सेपरेटेड एनर्जी है, सेपरेटेड एनर्जी है, मैं उनसे अलग हूँ लेकिन सेपरेटेड एनर्जी, लेकिन वो मेरे से आए हैं। तो इसलिए जो वैष्णव तत्व है तो इसी, वो हमेशा इस शब्द को इस्तेमाल करते कि अचिंत्य, जो नहीं समझा जा सकता है अचिंत्य। लेकिन जो मायावद है वो लोग इस शब्द को, क्योंकि वो भगवान से नहीं, भगवान को नहीं जान सकते हैं, भक्त्यामाम अभी जानाति, क्योंकि भगवान को अपने ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो जानना चाहते हैं, तो इसलिए इस शब्द को इस्तेमाल करते कि ये अनिर्वचनीय है। क्योंकि हम भगवान को कैसे एक शरीर दे सकते हैं या भगवान का गुण कैसे बताते हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान जो है निर्विशेष है, शून्य है, और भगवान जो निर्गुण है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है। तो मायावादी लोग एक्चुअली इस प्रकार का, क्योंकि वो उसको समझ नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं उसका वो उसको वर्णन इस रूप से करते कि ये अब अनिर्वचनीय, लेकिन जो वैष्णव तत्व है वो बताते हैं कि ये अचिंत्य है ना। तो मायावाद जो है उनके कई सारे महावाक्य होता है, जैसे हमने अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम ब्रह्मास्मि वो गलत नहीं एक्चुअली कि आपने आपको जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि भगवान को जानने के लिए वो पहला स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति। और बताए कि सोहम, कई सारे लोगों का नाम भी होता है सोहम है ना, और बताया कि उनका जो महावाक्य है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और बताया था कि अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म मतलब थी। तो इसमें वो बताते कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्योंकि वो मानते कि, लेकिन आप प्रभुपाद जी बताते कि हमारा तत्व ज्ञान बताते कि ये ब्रह्म सत्य है, लेकिन ये जगत कैसे मिथ्या होगा, क्योंकि अगर मिथ्या है क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो उसका ओरिजिन तो कहीं रहेगा, ताकि उसका प्रतिबिंब ये है, तो इसलिए मिथ्या नहीं है, ये क्या है, ये अश्वासत्य है ना, टेम्परेरी है ना, अश्वसत्य ये अश्वासत्य एक्चुअली, ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने के, तो इसलिए मायावादी जो तत्व है वो पूर्ण नहीं है, तो देखिए ब्राह्मण सत्य और जगत मिथ्या, इसलिए उनका वही इच्छा रहता है कि हम इससे कैसे यहाँ से मुक्त होना चाहते हैं, हम कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं, हम कहते हैं क्यों कार्य करना नहीं चाहते हैं, क्यों संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखते हैं यहाँ पे है जो संबंध ही है ना, चाहे वो भौतिक संबंध हो चाहे आध्यात्मिक संबंध हो, तो हर संबंध में देखते हैं कि संबंध के द्वारा हम पीड़ित होते हैं, हमारा मन परेशान होते हैं, हमारा संबंध नष्ट खराब होता है, तो इसलिए हम परेशान होके, तो मायावादी लोग हैं इसलिए बोलते कि उनका कहना ही है कि क्योंकि इसलिए यहाँ पे जो संबंध हमको परेशान होता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई आकार नहीं होना चाहिए, वहाँ सब शून्य होना चाहिए, इसलिए उनका अंतिम ध्येय ये है कि हम उनके साथ एकाकार बनना चाहते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि, और भगवद गीता में भी उसका पुष्टि किया है कि ब्राह्मण हुई प्रतिष्ठान, भगवान स्वयं स्पष्ट शब्द में बताते कि जो ब्राह्मण है तो उसका भी जो सोर्स है वो भी मैं हूँ। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद किस प्रकार इस जो तत्वज्ञान को इतने अच्छे तरह से समझाए, और प्रभुपाद के शिष्य लोग को इसे अच्छे तरह से उसको दूसरों को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार दिखा रहे थे कि प्रभुपाद सेवक जो ब्रह्मानंद स्वामी के साथ वो गंगा पार कर रहे थे, फिर गंगा के किनारे में पहुंचे और ब्रह्मानंद स्वामी वो पहले उतरे और फिर प्रभुपाद जी को हाथ पकड़े और प्रभुपाद को जो उस तरफ लिए, तो प्रभुपाद नाव में थे, प्रभुपाद जी उतर गए, फिर प्रभुपाद जी क्या कि ब्रह्मानंद स्वामी को भी खींचे एक्चुअली पानी की तरफ, तो इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी ऐसे क्यों हर्ता करते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले कि ये है मायावाद है ना, क्योंकि मायावाद जो तत्व है वो भगवान बनना चाहते, कब तक भगवान बनना चाहते हैं कि जब तक उनके इंद्रिय शुद्ध हो गया, इंद्रिय से निष्क्रिय हो गया, और फिर भगवान के बनने के बाद सोचते कि मुझे अभी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है ना? तो लेकिन प्रभुपाद जी उनको समझाए। तो एक बार गुरुदास प्रभु भी बता रहे थे कि वो कुंभ मेला में आए थे, तो वहाँ पे अलग अलग साधु संत मिल रहे थे, तो उसमें एक साधु से मिले तो उन्होंने भी तत्व ज्ञान दिया, ठंडी के समय था क्योंकि जनवरी फरवरी होता है कुंभ मेला अलाहाबाद में, तो फिर जब बात कर रहे थे तो वो भी नहीं मान रहा था लेकिन सब एक है, तो गुरुदास स्वामी क्या किया एक्चुअली कि फिर जो रात का समय रात को सोने के लिए चादर चाहिए थी, तो गुरुदास स्वामी ने क्या किया चादर से एक धागा निकाले और निकाल के उनको लिए, बोले कि आप ले लो, तो बोले नहीं इससे कैसे मैं, तो बोले आपने तो अभी बोले कि एक सब एक ही है। और एक बार ऐसे है भवानंद प्रभु ऐसे एक मायावादी का सम्मेलन में गए थे और इस प्रकार का जो बाद व्याद हुआ तो सब बोले कि सर ब्रह्म है। तो भवानंद प्रभु को इतना गुस्सा आया तो उन्होंने खड़े का एक्चुअली जिस कुर्सी पे बैठे थे तो उसने कुर्सी को उठा है, बोले कि ये ब्रह्म है और ये भी ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म से मैं इस ब्रह्म को मारे नहीं एक्चुअली, लेकिन वो उनको समझाने के लिए प्रयास किए कि ये कितना गलत है इसका प्रतिपादन करना, है ना। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में भी देख सके कि चैतन्य महाप्रभु जो अपने बचपन के लीला में चैतन्य महाप्रभु क्या कि एक बार मिट्टी खाया करते थे, जैसे भगवान कृष्ण मिट्टी खाए थे, तो शची देवी माँ पूछा रहे आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं, आपको पता है मिट्टी खाने से पेट में कृमि हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, क्योंकि मिट्टी से तो सब कुछ बनता है, मिट्टी से सारे पेड़ पौधा सब कुछ बनता है, तो कहते हैं। लेकिन शची देवी बोले कि नहीं वो तो है, लेकिन जिस प्रकार से कि आप मिट्टी से प्रपद उदाहरण जैसे मिट्टी में हम प्राणी पानी जल को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन मिट्टी में अगर घड़ा बनता है उसमें हम जल को ग्रहण कर सकते हैं, तो इसके रूपांतर है, तो हम डायरेक्ट हम मिट्टी में देते हैं उसका रूपांतर है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन की उम्र में यही तत्व उन्होंने सच्ची माता के द्वारा हम सबको सिखाया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जो छोटे उम्र में एक बार मुरारी गुप्ता क्योंकि वैद्य थे तो किसी दूसरे शहर में गए थे, जो दोपहर के समय वापस आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो मुरारी गुप्ता उनको पूछ रहे कि क्या चाहिए आपको, बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आपके काम में क्यों देते हैं। तो मुरारी गुप्ता कुछ लगा कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, तो मुरारी गुप्ता अपने निवास में आए और फिर उन्होंने बताया कि भोजन, तो भोजन का थाली तैयार हुआ और निमाय पंडित आके वहाँ पे सामने बैठ गए। और जब फिर महाप्रभु फिर मुरारी गुप्ता पूछते आपको क्या चाहिए, क्या प्रसाद चाहिए, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे देखने लगे मुझको। जब मुरारी गुप्ता खाने जा रहे थे तो निमाय पंडित क्या किए कि उनका पूरे प्लेट में पेशाब कर दिए संतती। तो मुरारी गुप्ता आए आप तो उनको भी वही शिक्षा दिए कि आप सब एक ही है संतती, है ना। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते कि जैसे कुछ मायावादी लोग क्या बोलते कि वो इस प्रकार से प्राणी को हत्या करके खाते हैं, बोलते कि उनका अंदर भी ब्रह्म है। तो प्रभुपाद बोलते कि गोट ब्रह्म ना बकरी, वो एक ब्रह्म एक्चुअली दूसरे ब्रह्म को खा रहे है ना। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा से, जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए वो भी एक मायावती प्रकाशानंद सॉरी केशव भारती श्रीमती थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु केशव भारती से संन्यास ग्रहण किए, चैतन्य महाप्रभु ने अपना नाम नहीं बदले, क्योंकि ये मायावती संन्यास होते हैं वो जब संन्यास लेते हैं तो उनको बताया कि मैं अभी भगवान हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म हो गया, हम ब्रह्म। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए वो दीक्षा लिए मायावत सन्यासी से, लेकिन उनका नाम उनने बदले नहीं, वही कृष्ण चैतन्य करके रखे। तो हम हमारे जीवन में देख सकते हैं कि हम अचिंत्य भेदभाव से इतने परिचित है, तो हमको अगर रात को कोई उठाएगा तो हम सपने में भी उसको बखान देंगे, तो हमको इतना जानने की क्या जरूरत है। तो इसलिए बताया था कि हम भी कुछ ही मात्रा में क्या है इसी तत्व को फॉलो करते हैं, मतलब मायावाद तत्व को क्यों फॉलो करते हैं, मायावाद तत्व कि हम भक्त के बीच में जैसे बताया था कि एक नवसिखा भक्त कनिष्ठ अधिकारी, तो कनिष्ठ अधिकारी का वही सोचता है कि एक्चुअली मेरा संबंध जो है भगवान के साथ है लेकिन भक्तों के साथ नहीं है ना, तो हम ब्रह्मस्मि भगवान को सब कुछ मानना आते होते हैं लेकिन वो भक्त के साथ उसका आदान प्रदान नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे एक्चुअली कि उसी आदान प्रदान से अगर वो आगे बढ़ेगा फिर मध्यम अधिकारी फिर उत्तम अधिकारी, तो फिर भक्त के साथ उसका अच्छा आदान प्रदान होगा उसी से, क्योंकि हम संबंध को तोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ पे जो हमारा भौतिक संबंध है भौतिक संबंध को हम आध्यात्मिक संबंध में उसको डाउटल कर सकते हैं। तो इसी से भक्ति में जो आनंद है इस आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। मायावाद के लोग पे केवल नाम में आनंद है, असली आनंद उनको प्राप्त नहीं होता है, जैसे जड़ानंद ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद में क्या सुख है, तो पद बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मानंद में ये सुख है क्योंकि वहां पे किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। तो कोई अगर परेशानी से मुक्त होना चाहता है तो वही समझते हैं, लेकिन उसको आनंद, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे कोई कष्ट नहीं है, तो वो ब्रह्मानंद सुख है मतलब। लेकिन कोई अगर भक्ति का आनंद अगर एक कण मात्र में तुले नाम लभे नापी, जिसे दो बार बताया गया श्रीमद् भागवतम में, थी भक्ति में जो आनंद है, इस आनंद को हम ना जो ब्रह्मानंद या जड़ानंद उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते है। और जिस भक्ति के आनंद कैसे हो सकता है अगर हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, भक्त के साथ कैसे बर्ताव होता है, तो उसी से हमारा प्रतिपादन होता है। और श्रील प्रभुपाद जी फिर आगे जो एक वहाँ पे एक बताया, जिस प्रकार के एक धनी व्यक्ति है, बंकिंघम पैलेस प्रभुपाद जी बताते हैं राजा, तो वह कितने सारे कमरा हो सकता है, लेकिन वो एक ही कमरे में रहता है, बाकी सब उसके विस्तार है अनुमति थी। और फिर आगे जाके प्रभुपाद बोलते हैं कि ईशावास सर्वम इदम, है ना। और फिर प्रभुपाद अंतिम में प्रभुपाद यही बताते हैं कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रिया निष्क्रिय रहती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्रिय अनुपस्थित रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रधान तो सारे भगवान के, जब प्रलय होता है तो सब भगवान के अंदर विलीन हो जाता है, लेकिन फिर से जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक सीडी, मतलब एक सीडी है, कैसेट प्लेयर है, या आजकल जो पेन ड्राइव है ना, तो उसमें हम देखते थे कि सारे वहाँ पे जितना भी जो रखा जाता है वो एकदम सुप्त अवस्था में है, लेकिन उसी के एक मशीन के द्वारा हम उसको डालते हैं तो पूरा उसमें दिखाया दे, इसका मतलब कि वो था ही नहीं था, वो सब था लेकिन वो निष्क्रिय अवस्था में था उसमें, देख फिर वो सक्रिय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रभुपाद जी इस अचिंत्य भेद अभेद तत्व को यहाँ समझा रहे हैं, और आगे कल का श्लोक में भी और विस्तृत रूप से उसका वर्णन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु प्रेमानंदे।